नमस्कार भारत, 8 दिसंबर दिन रविवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। ब्रिटेन के चुनाव में कश्मीर का मुद्दा, ब्रैडफोर्ड में एशियाई मूल के वोटरों को लुभाने के लिए उम्मीदवार कर रहे हैं वादे।
इस वक्त जो हमारे दो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं वो कश्मीर से हैं, उनके लिए यही कि वोटर्स कहेंगे कि उनकी आवाज उठाई जाए।
उन्नाव पहुंचा रेप पीड़िता का शव, आज अंतिम संस्कार, पिता ने लगाई इंसाफ की गुहार, यूपी सरकार को घेरने में जुटा विपक्ष।
अपराधी के दिल में कुछ भय ही नहीं है। उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में 90 बलात्कार हुए पिछले 11 महीनों में। जिम्मेदारी अगर सरकार नहीं लेगी तो कौन लेगा।
और झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने क्यों नहीं उतारे मुस्लिम उम्मीदवार, खास बातचीत में सीएम रघुवर दास बोले,
देखिए टिकट से मुस्लिम समाज का जीवन नहीं बदलेगा, हमारी सरकार में कोई जाति और धर्म के आधार पर हम विकास नहीं करते।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार तन्वी से। अमेरिका और ईरान ने आपसी संबंधों में अरसे से बने तनाव को परे रखते हुए एक दूसरे के कैदियों की अदला बदली की है। दोनों देशों ने जिन कैदियों को रिहा किया है उनमें चीन मूल के एक अमरीकी शोधकर्ता शिव वांग और ईरान के एक वैज्ञानिक मसूद सुलेमानी शामिल हैं। अमरीकी शोधकर्ता को ईरान ने जासूसी का दोषी ठहराया था, वहीं ईरान के वैज्ञानिक को प्रतिबंधों के उल्लंघन को लेकर अमेरिका की जेल में रखा गया था। रिहा किए गए दोनों शख्स कोई भी गलत काम करने से इनकार करते रहे थे। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ट्विटर पर लिखा, एक साफ सुथरे समझौते के लिए ईरान आपका शुक्रिया, देखिए हम एक दूसरे के साथ समझौता कर सकते हैं। वहीं ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने कहा है कि वो भी इस अदला बदली से खुश हैं। दोनों ही देशों ने मध्यस्थता के लिए स्विट्जरलैंड की सरकार को धन्यवाद किया है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को जिस सऊदी एयरफोर्स ट्रेनी ने अमेरिका के फ्लोरिडा में एक सैन्य अड्डे पर 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी, उसने शूटिंग से पहले अमेरिका की विदेशी युद्धों में भागीदारी पर कुछ अहम टिप्पणियां ऑनलाइन पोस्ट की थी। एक इंटरनेट मॉनिटरिंग ग्रुप के मुताबिक इन टिप्पणियों में ओसामा बिन लादेन की तारीफ भी शामिल है। घटना की जांच कर रहे अधिकारी अभी इस मामले के पीछे का मकसद नहीं जान पाए हैं। इस घटना के कुछ ही घंटों बाद सऊदी अरब के किंग सलमान ने इसे एक घोर अपराध बताते हुए अपनी संवेदना व्यक्त की थी। वहीं अमरीकी रक्षा सचिव मार्क एस्पर ने कहा है कि वे शुक्रवार की इस शूटिंग की घटना को अभी तक आतंकवादी हमला नहीं कह सकते। इराक के सबसे ताकतवर मौलवी मुक्तदा अल सदर के नजदीकी सूत्रों ने कहा है कि नजफ शहर में उनके घर पर ड्रोन से मिसाइल हमला किया गया है। ड्रोन से होने वाले इस हमले के पीछे किसका हाथ हो सकता है इसका पता नहीं चला है। हालांकि हमले में मुक्तदा अल सदर को कोई नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि माना जा रहा है कि हमले के वक्त वे पड़ोसी मुल्क ईरान में थे। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब इलाके में तनाव बढ़ा हुआ है। बीते शुक्रवार को अज्ञात बंदूकधारियों ने बगदाद में सरकारी विरोधी प्रदर्शनकारियों पर हमला कर दिया था। इस घटना में कम से कम 19 लोग मारे गए थे। मुक्तदा सदर द्वारा इराक में चलाए जा रहे सदर आंदोलन के प्रतिनिधि नासिर रबीए ने बगदाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, शुक्रवार की रात खुलानी स्क्वायर पर प्रदर्शनकारियों पर हमले किए गए, कई लोगों की मौत हुई है। हम लोग प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा कर रहे थे। इसके बाद हन्ना इलाके में मुक्तदा अल सदर के घर पर ड्रोन से हमला किया गया है। ये सब बता रहा है कि इराक को बिल्कुल गर्क में ले जाने के लिए कुछ लोग संदिग्ध एजेंडा चला रहे हैं। ये थे इराक के सदर आंदोलन के प्रतिनिधि नासिर रबीए के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सुझाव दिया है कि वे अभी भी उत्तर कोरिया से परमाणु हथियार हटाने के लिए एक समझौता लाने की उम्मीद करते हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र में प्योंगयांग के राजदूत ने हाल ही में यह बयान दिया कि ये मुद्दा अब ऑफ द टेबल यानी बंद है। उत्तर कोरिया ने परमाणु निरस्तीकरण पर अब तक 3 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं लेकिन इनमें कोई प्रगति नहीं हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप और उत्तर कोरियाई राजदूत की ये प्रतिक्रियाएं पिछले एक हफ्ते तक चली तीखी व्यक्तिगत अपमानजनक टिप्पणियों के बाद आई हैं। मड्रिड में चल रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में प्रस्तुत की गई एक नई वैज्ञानिक रिपोर्ट में ये चेतावनी दी गई है कि जलवायु परिवर्तन और पोषक तत्वों से पैदा होने वाले प्रदूषण की वजह से महासागरों में ऑक्सीजन घट रही है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इससे मछलियों की कई प्रजातियां खतरे में आ गई हैं। प्रकृति के लिए काम करने वाला समूह ICUN की इस रिपोर्ट में ये सामने आया है कि 1960 के दशक में महासागरों में 45 ऐसे स्थान थे जहां ऑक्सीजन कम थी लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 700 तक पहुंच गई है। ब्राजील के उत्तरी राज्य मारनहाओ में एक हमले से 2 जनजातीय समुदाय लोगों की मौत की खबर है। इन लोगों पर अज्ञात बंदूकधारी ने हमला किया है। बताया जा रहा है कि जनजातीय समुदाय की रिहाइश के पास की सड़क में इस शख्स ने ट्रक पर सवार होकर गोलियां चलाई। इस हमले में 4 अन्य लोग घायल हुए हैं। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत, आपके साथ मैं हूँ वात्सल्य राय। आप ये कार्यक्रम रेडियो के साथ बीबीसी के मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं लाइव। नमस्कार। भारत में सबसे पहले बात ब्रिटेन के चुनाव की। ब्रिटेन के चुनाव में राजनीतिक दल और उम्मीदवार कश्मीर का मुद्दा भी उठा रहे हैं, खासकर उत्तरी ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड शहर में, जहां भारत और पाकिस्तान के मूल के लोगों की बड़ी संख्या है। भारत सरकार के जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले के बाद से यहां दोनों समुदायों के बीच एक दीवार सी खड़ी हो गई है। यहां कश्मीर का मुद्दा वोटरों के लिए कितना अहम है, बता रहे हैं बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद अपनी इस रिपोर्ट में।
ब्रैडफोर्ड की 43% आबादी दक्षिण एशियाई मूल की है। इसमें पाकिस्तानी मूल के कश्मीरी बहुमत में है। यहाँ के दो उम्मीदवार भी पाकिस्तानी कश्मीर के हैं। ब्रैडफोर्ड स्थित पाकिस्तानी मूल का व्यापारी परिवार, कश्मीर इनके लिए एक अहम चुनावी मुद्दा है।
इस वक्त जो हमारे दो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं वो कश्मीर से हैं, उनके लिए कंसर्न है कि वहाँ क्या हो रहा है। तो उनके लिए यही कि वोटर्स कहेंगे कि उनकी आवाज़ उठाई जाए पार्लियामेंट में, वो इशू रेज किया जाए भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इस सिलसिले में ये है कि यहाँ पे होगा उस पर।
इस मुद्दे ने भारतीय और पाकिस्तानी मूल के लोगों के बीच नफरत की एक दीवार सी खड़ी कर दी है।
I don't really think as a community, I think we tolerate each other. I don't think we've ever climbed the wall. So I'd sort of like.
हिंदू समुदाय के लिए भी कश्मीर का मुद्दा अहम है।
जितने भी हमने लेबर एमपीज को सुना है, वो उनका सबका यही ख्याल है कि जो उनसे आर्टिकल 370 है, दैट्स नॉट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो उनसे यहाँ पे एमपीज हैं, दे आर ऑल फ्रॉम मोस्ट पाकिस्तानी ओरिजिन। जो उनसे लेबर पार्टी का, जो उनसे इंडियंस का ख्याल है कि वो दे आर मोर टूवर्ड्स मुस्लिम मेजॉरिटी, मुस्लिम साइड को ज़्यादा, एंड दे आर नॉट विद द इंडियन पॉपुलेशन।
लेबर पार्टी ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में कश्मीर पर अधिक हस्तक्षेप करने वाली नीति का वादा किया है। पार्टी की इस कश्मीर पॉलिसी ने भारतीय हिंदुओं को इससे दूर कर दिया है।
ये जो कॉर्बिन ने आर्टिकल 370 के कुछ खिलाफ बोला था, तो उस वजह से भी कुछ इंडियन कम्युनिटी कंजर्वेटिव को सपोर्ट करने लग गई और उधर शिफ्ट हो गई।
भारतीय मूल के लोगों का तर्क यह है कि कश्मीर यहाँ के चुनाव या यहाँ की राजनीति का हिस्सा नहीं होना चाहिए।
मेरे विचार में ऐसा है कि ये हमारे भारत पाकिस्तान का मैटर है। यूके या फिर दूसरे गवर्नमेंट को उतना या यहाँ के लोगों को उतना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए उस मैटर में।
दक्षिण एशिया के मूल के लोग पार्टियों की कश्मीर नीति के आधार पर वोट जरूर देने वाले हैं, लेकिन वो ये भी महसूस करते हैं कि ये मुद्दा केवल चुनाव तक ही सीमित रहेगा। जुबैर अहमद, बीबीसी ब्रैडफोर्ड।
अमेरिका और ईरान ने रिश्तों की तलखी को परे रखते हुए एक दूसरे के कैदियों को रिहा किया है। ईरान ने जासूसी के आरोप में बंद एक अमरीकी शोधकर्ता को रिहा किया है। वहीं अमरीका ने ईरान के एक वैज्ञानिक को घर जाने की अनुमति दी है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसके लिए ईरान को शुक्रिया कहा है, तो ईरान के विदेश मंत्री ने भी खुशी जाहिर की है। पूरी रिपोर्ट तन्वी से।
चीनी मूल के अमरीकी शोधकर्ता शिव वांग बीते 3 साल से ईरान में कैद थे। वो वहां शोध के लिए गए थे, लेकिन उन पर जासूसी का आरोप लगा और 10 साल की सजा सुना दी गई। लेकिन तय वक्त से 7 साल पहले वो घर लौट रहे हैं। वांग की पत्नी और बेटा खुश हैं, तो अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी उनकी रिहाई के लिए ईरान को शुक्रिया कहा है। ट्रंप के कार्यकाल में अमरीका और ईरान के रिश्ते लगातार खराब हुए हैं। उन्होंने जब से ईरान के साथ हुई अंतर्राष्ट्रीय परमाणु संधि से बाहर आने का ऐलान किया है, तब से दोनों देशों के बीच की बढ़ती ही गई है। लेकिन अब ट्रंप ने कहा है कि ये समझौता दिखाता है कि दोनों देश डील कर सकते हैं। अटलांटिक काउंसिल में ईरान की विश्लेषक गीसो निया कहती हैं कि ये घटनाक्रम चौंकाने वाला है। अमेरिका ने साल 2018 में परमाणु संधि से अलग होने का फैसला एक तरफा तरीके से लिया था। तब से अमरीका ने ईरान पर कई प्रतिबंध लगाए हैं, इसलिए ईरान की सरकार अमरीका के साथ संवाद नहीं करना चाहती है। ये ट्रंप के युग में पहली बार हो रहा है कि ईरान ने एक विदेशी कैदी को रिहा किया है। ये थे गिसोनिया के शब्द। इस समझौते के तहत अमरीका ने भी ईरान के वैज्ञानिक मसूद सुलेमानी को रिहा किया है। उन्हें बीते साल शिकागो में व्यापारिक प्रतिबंधों के उल्लंघन के आरोप में हिरासत में लिया गया था। सुलेमानी और वांग दोनों ही खुद पर लगाए इन आरोपों को गलत बताते रहे थे, लेकिन इन दोनों की रिहाई के पहले ईरान और अमरीका के बीच कैदियों की ऐसी अदला बदली बहुत कम देखने को मिली है। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप में ईरान प्रोजेक्ट के डायरेक्टर अली वाइस का आकलन है कि ये संधि उम्मीद जगाती है। मौजूदा तनाव की मूल वजह यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने परमाणु संधि से अलग होने का फैसला किया। इसके बाद से दोनों देशों में तनाव बढ़ा। जरूरी नहीं है कि इस पहले कदम से व्यापक असहमतियों को दूर करने का दरवाजा खुल जाए, लेकिन इससे बातचीत का एक रास्ता तो खुल ही गया है। ये थे इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप में ईरान प्रोजेक्ट के डायरेक्टर अली वाइस के शब्द। ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने भी कहा है कि वो इस अदला बदली से खुश हैं, लेकिन क्या ये खुशी दोनों देशों के रिश्तों में आई तल्खी को कम कर पाएगी, इसका जवाब हमें आने वाले दिनों में ही मिलेगा।
रिपोर्ट सुना रही थी तन्वी। रुख भारत का और बात उन्नाव रेप मामले की पीड़िता की, जिनकी शुक्रवार रात दिल्ली के एक अस्पताल में मौत हो गई थी। कल देर रात उनका शव उन्नाव पहुंचा। राज्य सरकार ने पीड़ित परिवार को सहायता दी है, लेकिन परिजन इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वहीं इस मुद्दे को लेकर विपक्ष उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने में जुटा है। सुनिए समीर आत्मज मिश्र की ये रिपोर्ट।
उन्नाव के हिंदूनगर गांव में शनिवार देर शाम जब पीड़ित लड़की का शव पहुंचा तो पूरा माहौल गमगीन हो गया। प्रशासन ने रात में ही अंतिम संस्कार कराने की तैयारी कर रखी थी, लेकिन परिवार इसके लिए तैयार नहीं था, तो प्रशासनिक अधिकारियों ने इसे उनकी मर्जी पर छोड़ दिया। लड़की का शव पहुंचने से ठीक पहले राज्य सरकार के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जिले के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री राहत कोष की ओर से पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने पहुंचे, लेकिन लड़की के पिता का कहना था कि उन्हें पैसा नहीं न्याय चाहिए।
धन दौलत है कौन हमका वह नहीं आए, हम भूखे मर जाए कुछ हो जाए, लेकिन हम सरकार से यही मांग रहे हैं कि जो घटना हमारे साथ हुई है, वो जो हैदराबाद में हुआ है हादसा, उसी हादसा के अंतर्गत इन लोगों को वही सजा मिलनी चाहिए।
दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में लड़की की मौत के बाद हिंदूनगर गांव में आवाजाही अचानक बढ़ गई और उन्नाव समेत राज्य के तमाम हिस्सों में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कई जगह प्रदर्शन हुए और दोषियों को सजा देने की मांग की जाने लगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लखनऊ से सीधे उन्नाव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की, तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव राजधानी में विधानसभा के सामने ही धरने पर बैठ गए। दोपहर बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी इस मामले में राज्यपाल से मुलाकात कर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रियंका गांधी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद राज्य सरकार पर जमकर अपना गुस्सा निकाला।
रोज रोज इस तरह का अपराध हो रहा है और प्रशासन शासन का कोई रिएक्शन ही नहीं। अगर इस तरह की अराजकता है कि रोज रोज ऐसा हादसा हो रहा है, अपराधी के दिल में कुछ भय ही नहीं है। एक साल से प्रताड़ित किया जा रहा है एक परिवार को, और ये सब जगह, एक ये नहीं है कि यहाँ सिर्फ यहाँ हो रहा है, मैनपुरी में हुआ है, संभल में हुआ है, शाहजहांपुर में हुआ है, उससे पहले यही हुआ है। उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में 90 बलात्कार हुए पिछले 11 महीनों में। तो अगर शासन प्रशासन जिम्मेदारी अगर सरकार नहीं लेगी कौन लेगा?
वहीं अखिलेश यादव ने लगातार हो रही ऐसी घटनाओं को सरकारी अक्षमता का प्रमाण बताया।
हमारे लिए ये काला दिवस है। क्या बेटी भागी वो बिचारी, जब उसका पूरा शरीर जला था उस समय भागी वो, और वो इसीलिए भागी के गुहार कर रही थी कि उसकी कोई मदद करे। क्या आज के युग में इस तरह की घटना होगी कि जिंदा जला देगा कोई?
लेकिन राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कहना था कि सरकार ने पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना फर्ज निभाया है।
जो घटना के अपराधी हैं उनको किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा, और प्रदेश में इस प्रकार की घटनाओं को नियंत्रित करने की दृष्टि से सरकार के स्तर पर, पुलिस के स्तर पर जो भी कदम उठाए जा सकते हैं वह जरूरी कदम उठाए गए हैं, और भी समीक्षा करके और भी जरूरी निर्देश दिए जाएंगे।
वहीं उन्नाव के हिंदूनगर गांव में पीड़ित लड़की की हत्या के आरोप में जेल में बंद अभियुक्तों के परिजन इस पूरे मामले की जाँच सीबीआई से कराने की मांग पर अड़े हैं। पीड़ित लड़की का आज उसके गांव में ही कड़ी सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार किया जाएगा। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी उन्नाव।
और अब बात झारखंड की, जहां विधानसभा चुनाव के दो चरण का मतदान हो चुका है। इन चुनावों को मुख्यमंत्री रघुवर दास के लिए सबसे बड़ी मुश्किल के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन वो इस चुनौती को लेकर खुद क्या मानते हैं, सुनिए बीबीसी संवाददाता रजनीश कुमार से उनकी ये खास बातचीत।
और मैं कहूं कि झारखंड विधानसभा का चुनाव 2019 का सबसे ईजी है।
आप ऐसा मानते हैं?
पूरी राज्य की जनता मान रही है।
आपका जो बिल सबसे विवादित रहा, एंटी कन्वर्जन जो बिल 2007 में आपने
पास, विवादित नहीं रहा, ये बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए। ये मेरा संविधान में है कि लोभ लालच भय के आधार पर कोई धर्मांतरित करना काम करता तो उसका कानून बनना चाहिए, संविधान में प्रावधान है। ये झारखंड में बहुत पहले लागू हो जाने चाहिए। कोई धर्म के आड़ में हमारे गरीब आदिवासी भोले भाले दलित को भय लोभ लालच देकर धर्मांतर करने का काम गैर कानूनी है। संविधान ने कहा राज्य सरकार कानून बना सकता है। जाति धर्म के आधार पर काम करना भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है।
लेकिन क्या धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर जो प्रतिनिधित्व की बात की जाती है, रिप्रेजेंटेशन की बात की जाती है, क्या आप इससे सहमत हैं?
क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, हर समाज चाहता है मेरा प्रतिनिधित्व रहना भी चाहिए, ठीक है, इसको मैं गलत नहीं मानता हूँ। और राजनीतिक पार्टियों को भी ये चाहिए सर्व समाज का प्रतिनिधित्व पार्लियामेंट के अंदर हो, सर्व समाज का प्रतिनिधि विधानसभा के अंदर हो। भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है।
वही मैं जानना चाह रहा था रघुवर जी कि बीजेपी ने झारखंड बनने के बाद किसी भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया।
देखिए फिर मैं आप मुसलमान ईसाई हिंदू की मैं बात नहीं करता,
नहीं प्रतिनिधित्व की बात हम लोग कर रहे हैं।
तो प्रतिनिधित्व देखिए, राजनीतिक दल कोई भी हो, हम तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करते हैं और न वोट बैंक की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी उसी उम्मीदवार को चुनाव लड़ाती है जो जीत सके।
अच्छा एक रघुवर जी, यहाँ पे विवाद हमेशा रहता है जो ईसाई आदिवासी हैं और जो सरना आदिवासी हैं, तो कई बार ऐसी मांग हुई कि ईसाई आदिवासी क्योंकि वो ईसाई बन चुके हैं और आदिवासी के जो मौलिक जो परंपरा है, जो उनका रहन सहन है, उससे वो जुदा हो चुके हैं, तो संवैधानिक जो अधिकार उनको मिले हैं रिजर्वेशन के, उससे बाहर किया जाए। कई बार झारखंड में ऐसी मांग उठी है, आपका क्या विचार है इस पर?
नहीं, इसमें कुछ लोग ने मेमोरेंडम दिए थे तो उसने हमने लीगल विभाग को भेजा, क्या तथ्य है इसमें देखिए, व्हाट इज तथ्य।
आप क्या मानते हैं, कोई आदिवासी जन्म के आधार पर होगा या धर्म के आधार पर होगा?
देखिए दो चीज़ें हैं, मैं इसके ज़रूर खिलाफ हूँ कि आप मान लीजिए मैं धर्मांतरित हो गया तो धर्मांतरित होकर एक जगह फिर हम अल्पसंख्यक का फायदा लें, दूसरा जगह फिर हम जाति के आधार पर उधर फायदा लें, उचित है? तो मेरा ये कहना ना, किसी को भी आपको चाहे हमको एक ही जगह से फायदा लेना चाहिए।
तो आप भविष्य में इस पर कुछ फैसला लेंगे?
नहीं, अभी तक इसमें विधान क्या कहता है बिना इसको तथ्य देखे समझे इस पर हमें कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझता।
एक बात और अकबर जी की, झारखंड में चुनाव उस वक्त हो रहा है जब अयोध्या में राम मंदिर बनने का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, उसके पक्ष में दिया है, तो क्या उसका कुछ इम्पैक्ट है इस चुनाव में?
क्यों नहीं इम्पैक्ट रहेगा, क्यों नहीं जम्मू कश्मीर का इम्पैक्ट रहेगा? कांग्रेस पार्टी ने सत्ता के में जब रहे तो इनको इस मसले को समाप्त कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर करने चाहिए थे, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा इसको वोट बैंक की राजनीति देकर देश में एक तनाव का वातावरण रहे ताकि उसको मुस्लिम वोट मिलता रहे।
बीजेपी को चाहिए कि नहीं मुस्लिम वोट?
मैं बता रहा, लेकिन जब 56 इंच का प्रधानमंत्री को देश की दोबारा जनता ने 2014 से भी प्रचंड बहुमत दी, तो जितनी पुरानी समस्या है मोदी जी उस समस्या को समाधान कर रहे हैं। और मैं देश के मुस्लिम समाज भाइयों बहनों को भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। ये जो भारत में गंगा जमुना की संस्कृति है, इस अयोध्या के जजमेंट आने के बाद दोनों समुदाय ने उस गंगा जमुना की तहजीब पर मुहर लगाकर दुनिया में ये बताने का काम किया, हम अलग विविधता में भी एकता, भारत की यही विशेषता।
झारखंड में 15% मुसलमान हैं और बीजेपी की तरफ से एक भी टिकट नहीं मिलता, तो आपको थोड़ा सा असहज नहीं होते हैं?
नहीं होता असहज। देखिए टिकट से मुस्लिम समाज का जीवन नहीं बदलेगा भैया। अब मैं झारखंड का बात बताऊँ आपको जी। आप मुस्लिम समाज में पास चले जाओ और जरा हमारा नाम लेके आप पूछो उससे। हमारी सरकार में कोई जाति और धर्म के आधार पर हम विकास नहीं करते।
लेकिन 10% ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने के लिए आपने, अमित शाह जी जब आए थे तो उन्होंने कहा कि ओबीसी का आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाएगा।
संविधान भी कहता है कि जिस जाति का जितना संख्या उसकी आरक्षण मिलनी चाहिए। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी हमने फीडबैक दी थी और ये पार्लियामेंट के चुनाव के पहले ही हमने सभी डीसी को आदेश दिया था कि पूरे पिछड़ा का सर्वेक्षण कराएं। हमने कहा कि 3 महीने के अंदर सर्वेक्षण करा के जो जनसंख्या के आधार पर संविधान विधि सम्मत आरक्षण हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे।
अगर बीजेपी बहुमत से दूर रह गई, लोकतंत्र में तो कुछ भी हो सकता है, आप भी इस बात से सहमत हैं, तो आप आजसू के साथ जाएंगे, मरांडी जी को बुलाएंगे, क्या करेंगे, क्या आपका आपकी तैयारी है?
पहले तो स्पष्ट रही है कि बीजेपी को स्पष्ट बहुमत झारखंड की जनता दे रही, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है।
अपने सबसे ज्यादा बीजेपी कब इंजॉय किया, अटल आडवाणी की बीजेपी या फिर मोदी शाह की बीजेपी?
अटल आडवाणी जी को भी इंजॉय किया और मोदी जी को डबल इंजॉय कर रहे हैं।
ये थे झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास और उनसे बात कर रहे थे बीबीसी संवाददाता रजनीश कुमार। और अब वक्त है आज के अखबारों पर नजर डालने का। अखबारों के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तन्वी। जी तन्वी, क्या खबरें हैं आज की?
जी वात्सल्य, जनसत्ता उन्नाव बलात्कार मामले में लिखता है, देश में गम और गुस्सा, जिंदगी की जंग हार गई उन्नाव कांड पीड़िता। अखबार आगे लिखता है, धरने पर अखिलेश, परिजनों से मिलने पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा। वहीं द हिंदू लिखता है, प्रियंका अखिलेश ने उन्नाव रेप केस के अभियुक्तों को बीजेपी से जोड़ा। राष्ट्रीय सहारा इसी खबर पर लिखता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाएगी योगी सरकार। अखबार लिखता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव पीड़िता की मौत पर दुख जताते हुए कहा है कि मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर अपराधियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। जनसत्ता ने हैदराबाद में महिला वेटनरी डॉक्टर से सामूहिक दुष्कर्म मामले में लिखा है कि मानवाधिकार आयोग ने शुरू की हैदराबाद मुठभेड़ की जांच।
जी, जो एनकाउंटर हुआ था,
जी, कथित एनकाउंटर। अखबार के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दल ने घटनास्थल का दौरा किया और महबूब नगर के सरकारी अस्पताल का भी, और जहां चारों आरोपियों के शव पोस्टमार्टम के बाद रखे गए हैं।
जी, चारों अभियुक्तों के शव वहां हैं।
जी,
और कोर्ट में उन्हें, कोर्ट ने कहा है सोमवार तक सुरक्षित रखने के लिए।
जी, हिंदुस्तान टाइम्स, संडे टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस ने हैदराबाद में हुए इस कथित एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की प्रतिक्रिया प्रकाशित की है। इस खबर के मुताबिक बोबडे ने कहा है कि न्याय तुरंत हासिल नहीं हो सकता और ये किसी बदले की भावना से नहीं होना चाहिए।
जी, सीजेआई के इस बयान को कई अखबारों ने, मैं देख रहा हूं, पहले पन्ने पर जगह दी है।
बिल्कुल, बोबडे ने ये कहा कि बदले की भावना से होने वाले न्याय में न्याय का चरित्र नहीं रह पाता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि न्याय प्रणाली को आपराधिक मामलों में ढिलाई के प्रति अपने रवैये पर पुनर्विचार करना चाहिए और उसे आसपास के बदलावों और अपने प्रति बन रही धारणाओं से अवगत होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि देश में हाल की घटनाओं में पुरानी बहस को फिर से छेड़ दिया है, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि आपराधिक न्याय व्यवस्था को ऐसे मामले में ढिलाई के बदले समय से निपटाने पर जोर देना चाहिए। उधर संडे टाइम्स में एक और दुखद रेप की घटना प्रकाशित हुई है। जैसे हमने उन्नाव में देखा, वैसे ही अब एक त्रिपुरा की 17 वर्षीय लड़की के साथ फिर से सामूहिक दुष्कर्म हुआ, फिर उसे जलाया गया और 90% जो उसकी बॉडी थी वो जलने के बाद कल देर रात उसकी मृत्यु हो गई है। साथ ही संडे टाइम्स में एक और खबर है, बिल्कुल साथ ही प्रकाशित है, वो कहती है कि लगभग 2,000 करोड़ से ज्यादा का जो निर्भया फंड है उसमें से 90% का हिस्सा अभी तक देश के राज्यों ने इस्तेमाल नहीं किया है।
जी,
ये भी चौंकाने वाली
खबर मैं देख रहा हूं जो अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। दैनिक जागरण में हेडलाइन उसको बनाया है पहले पन्ने पर, आयकर में राहत देने की तैयारी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फिर दिए संकेत, बजट तक करना होगा इंतजार। जी तन्वी, अखबारों की समीक्षा के लिए बहुत शुक्रिया। और अब एक नजर डाल लेते हैं पाकिस्तान के उर्दू अखबारों की इस हफ्ते की सुर्खियों पर। उर्दू अखबारों की समीक्षा तैयार की है बीबीसी संवाददाता इकबाल अहमद ने और इसे पेश कर रहे हैं हमारे साथी नवीन नेगी।
पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों में इस हफ्ते बिलावल भुट्टो का इमरान खान पर हमला, पाकिस्तानी विदेश मंत्री का श्रीलंकाई दौरा और नवाज शरीफ से जुड़े मुद्दे सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे। सबसे पहले बात पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की। अखबार एक्सप्रेस के अनुसार बिलावल भुट्टो ने कहा है कि कानून में बदलाव से पहले ही पाकिस्तान में एक नया प्रधानमंत्री होगा। अखबार के अनुसार बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल बाजवा के सेवा विस्तार के मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार है। बिलावल ने कहा कि जहां तक कानून के जानकारों का सवाल है, उनका कहना है कि सेना प्रमुख की सेवा विस्तार के लिए संविधान संशोधन बिल लाना होगा। अखबारों के मुताबिक पाकिस्तान और चीन के अधिकारियों ने एक ही दिन श्रीलंका के नए राष्ट्रपति गोटाभाया राजपक्षे से मुलाकात की, जिससे भारत बेचैन हो गया। अखबार एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक यह कहना मुश्किल है कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और चीनी अधिकारी का एक ही दिन कोलंबो पहुंचना महज संयोग है या फिर दोनों ने मिलकर ऐसी रणनीति बनाई है। अखबार लिखता है कि जानकारों के अनुसार ये इस बात की ओर संकेत है कि पाकिस्तान और चीन दोनों ही श्रीलंका के साथ अपने संबंधों को कितनी अहमियत देते हैं। अखबार कहता है कि पाकिस्तान और चीन के इस राजनयिक पहल से भारत बेचैन नजर आता है, क्योंकि भारत को पता है कि राजपक्षे परिवार के पाकिस्तान और चीन से बहुत अच्छे संबंध हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को इलाज के लिए अमेरिका ले जाना पड़ सकता है। शरीफ इन दिनों इलाज के लिए लंदन में हैं। अखबार जंग के अनुसार नवाज शरीफ के परिजनों का कहना है कि उनकी तबीयत में कोई खास बेहतरी नहीं हो रही है। परिजनों का कहना है कि उनके दिमाग को खून पहुंचाने वाली धमनियां काम नहीं कर रही हैं और इसका हल ब्रिटेन की डॉक्टरों के पास भी नहीं है। सऊदी अरब ने कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के समर्थन का आश्वासन दिया है। अखबार नवाए वक्त के अनुसार सऊदी अरब शूरा काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन इब्राहिम अल शेख ने पाकिस्तान का दौरा किया और प्रधानमंत्री इमरान खान और राष्ट्रपति आरिफ अलवी से मुलाकात की। अखबार के अनुसार इस मुलाकात के दौरान उन्होंने ये बातें कहीं। इस मुलाकात में पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने कहा कि भारत प्रशासित कश्मीर में फासिस्ट बीजेपी सरकार के हाथों 126 दिन से कर्फ्यू और मीडिया ब्लैकआउट कश्मीरी जनता के बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने कहा कि नागरिकता संशोधन बिल के जरिए भारत की मुस्लिम नागरिकों के खिलाफ की जाने वाली साजिश को दुनिया के सामने लाना होगा।
उर्दू अखबारों की समीक्षा सुना रहे थे नवीन नेगी, इसे तैयार किया था इकबाल अहमद ने। और अब खेल की खबरें।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। जीत के रथ पर सवार भारतीय क्रिकेट टीम आज तिरुवनंतपुरम में वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की 2020 सीरीज का दूसरा मैच खेलेगी। भारत ने हैदराबाद में खेले गए पहले मैच में वेस्टइंडीज को कप्तान विराट कोहली के नाबाद 94 और केएल राहुल के 62 रन की मदद से 4 विकेट से हराया, वो भी तब जब उसके सामने जीत के लिए 208 रन जैसा बड़ा लक्ष्य था। केएल राहुल ने समझाया कैसे भारत ने जीत की मंजिल तय की।
अनफॉर्चुनेटली रोहित आउट हो गया जल्दी एंड विराट केम इन, तो थोड़ा पार्टनरशिप बनाना पड़ा एंड बीच में इतना इजीली बाउंड्रीज नहीं मिल रहा था, सो वी हैड टू टेक इट अ लिटिल डीप। हमें पता था जब 10 ओवर हो गए थे वी नीडेड अनदर 120 रन, सो तब तो देयर इज नो प्लानिंग, मारना ही था एंड लकीली विराट स्टेड टिल द एंड एंड फिनिश कर दिया उन्होंने।
वैसे वेस्टइंडीज ने भी पहले मैच में कुछ दमखम दिखाया, खासकर सिमरन हेटमायर, एवन लेविस, कप्तान किरण पोलार्ड और जेसन होल्डर का बल्ला चला। उम्मीद है आज भी वो अच्छा खेलें। वैसे भारत को थोड़ी बहुत चिंता गेंदबाजी को लेकर होगी, जिस तरह से उसके गेंदबाज महंगे साबित हुए। आज की जीत भारत के लिए सीरीज जीतने वाली भी होगी। दूसरी तरफ वेस्टइंडीज किसी भी कीमत पर जीत हासिल कर सीरीज का रोमांच बचाने की कोशिश करेगी। उधर नेपाल में जारी दक्षिण एशियाई खेलों में भारत का दबदबा बना हुआ है और कल पदक तालिका में उसके खाते में 110 स्वर्ण, 69 रजत और 35 कांस्य पदक सहित 214 पदक थे। कल भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने भी मेजबान नेपाल को 1-0 से हराकर फाइनल में अपनी जगह बनाई। एथलेटिक्स में भारत के नाम 12 स्वर्ण, 22 रजत और 13 कांस्य पदक सहित 47 पदक हैं। वैसे श्रीलंका कल तक एथलेटिक्स में भारत के मुकाबले 3 स्वर्ण पदक अधिक यानी 15 स्वर्ण पदक जीतकर पहले स्थान पर था। साइकिलिंग में भारत ने 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक सहित 5 पदक जीते। वहीं भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम 3 देशों के टूर्नामेंट में आज अपना चौथा और आखिरी मैच ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। इससे पहले भारत ने अपने तीसरे मैच में न्यूजीलैंड को 4-1 से हराया था।
नमस्कार भारत में आपसे विदा लें, उसके पहले मुख्य समाचार तन्वी से।
बीबीसी समाचार। अमेरिका और ईरान ने आपसी संबंधों में अरसे से बने तनाव को परे रखते हुए एक दूसरे के 2 कैदियों की अदला बदली की है। दोनों ही देशों ने मध्यस्थता के लिए स्विट्जरलैंड की सरकार को धन्यवाद दिया है। अमेरिका से आ रही रिपोर्टों के अनुसार शुक्रवार को जिस सऊदी एयरफोर्स ट्रेनी ने फ्लोरिडा के एक सैन्य अड्डे पर 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी, उसने शूटिंग से पहले अपने ऑनलाइन टिप्पणियों में ओसामा बिन लादेन की तारीफ की है। इराक के सबसे ताकतवर मौलवी मुक्तदा अल सदर ने नजदीकी सूत्रों ने कहा है कि नजफ शहर में उनके घर पर ड्रोन से मिसाइल हमला किया गया है। अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सुझाव दिया है कि वे अभी भी उत्तर कोरिया से परमाणु हथियार हटाने के लिए एक समझौता लाने की उम्मीद करते हैं। जलवायु परिवर्तन और पोषक तत्वों से पैदा होने वाले प्रदूषण की वजह से महासागरों में ऑक्सीजन 2% घट रही है। ये चेतावनी मड्रिड में चल रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में प्रस्तुत एक नई वैज्ञानिक रिपोर्ट में दी गई है। ब्राजील के उत्तरी राज्य मारनहाओ में एक हमले से 2 जनजातीय समुदाय लोगों की मौत की खबर है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। स्टूडियो की कमान थी दीपक जसरोटिया के हाथ। दिन भर में होगी आपसे अगली मुलाकात। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है bbchindi.com। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।